शाह परिवार की बड़ी संपदा का वर्णन करना कठिन था। ऐसे में कई सारे यात्री जो शाह भवन से गुजर रहे थे उनकी आंखें आश्चर्य से चमकने लगी। तभी एक यात्री ने धीमी आवाज में कहा,
अरे शाह परिवार की संपदा तो वाकई लाजवाब है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं साहित्य की पढ़ाई छोड़कर युवावस्था में ही युद्ध कला का अभ्यास शुरू कर देता। कितनी पछतावे भरी बात है, लेकिन क्या अब भी मौका है?
दूसरे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा,
ऐसा जरूरी नहीं है। योद्धाओं की दुनिया बहुत खूनी और क्रूर होती है। क्या तुम्हें लगता है कि शाह परिवार को इतना वैभव यूं ही मिल गया होगा? कितनी कठिनाइयों से गुजरा होगा वो? क्या तुम तैयार हो उस खून खराबे के लिए?
फिर उस पहले यात्री ने धीमी आवाज में कहा,
अरे भाई ये सब छोड़ो। अफवाह है कि शाह परिवार की राजकुमारी पति की तलाश में है। आप प्रतिभाशाली योद्धा हैं और आपका रूप भी अतुलनीय है, फिर आप भी कोशिश क्यों नहीं करते?
पिछले एक महीने से शाह परिवार दूल्हे की तलाश में लगा था। हालांकि शीर्ष प्रकृति शरीर की परेशानी से निपटना बहुत जरूरी था, फिर भी शाह परिवार अमरावती का सबसे बड़ा कुलीन परिवार था। ऐसे में वो लोग राजकुमारी की शादी के लिए योग्य व्यक्ति खोजने के लिए जल्दी नहीं कर सकते थे। शाह परिवार की दूल्हा खोजने की प्रक्रिया ने कई युवा और कुलीन योद्धाओं को आकर्षित किया। आखिरकार वो विदर्भ साम्राज्य के सम्राट की नातिन है। अगर वो वास्तव में राजकुमारी से शादी कर सकते हैं तो शायद आसमान में पहुंच जाएंगे। उस यात्री की बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा,
मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता।
तभी एक अन्य यात्री बोल पड़ा,
तुम थोड़े समझदार लगते हो। इन दिनों शाह परिवार में कम से कम 1000 युवा योद्धा आए हैं और उनमें आकाश श्रेणी की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उन लोगों की उम्र केवल 20 से 30 वर्ष है और उनकी साधना भी भयानक रूप से अधिक है, लेकिन राजकुमारी का मानक बहुत ऊंचा है। उन्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया।
राजकुमारी के लिए दूल्हे की खोज अमरावती में एक बड़ी घटना थी। सड़कों पर हर कोई इस बारे में ही बात कर रहा था। उधर शाह महल की गहराई में एक छोटे से एकांत कमरे में एक 18 साल की लड़की पद्मासन में बैठी साधना में लीन थी। उस युवा लड़की ने सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उसके लंबे बाल उसके कंधों से नीचे लटक रहे थे। उसका गोरा और कोमल चेहरा बहुत ही सरल और सुंदर लग रहा था। उसी समय उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आवाज सुनकर उस लड़की ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। शुरू में तो वो उठकर दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन वो दस्तक लगातार जारी रही। मानो वो आवाज तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि दरवाजा खुल नहीं जाता। हताशा में वो फुसफुसाकर बोली, अंदर आ जाओ। इसी के साथ कमरे का दरवाजा खोला गया और तीन लोग अंदर आ गए। सबसे आगे एक युवक था जिसकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उस लड़की को देखते ही युवक का चेहरा चमक उठा और वो सीधे आयाम को पार कर उस लड़की के सामने पहुंच गया।
दी, इसी के साथ उस युवक ने मधुर स्वर में पुकारा।
यह सुनकर उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े युवक को गुस्से में देखते हुए बोली,
सार्थक, क्या तुम आम लोगों की तरह नहीं चल सकते? कितनी जलन होती है तुम्हारी इन हरकतों से, क्या कभी बदलोगे?
ये युवक विदर्भ साम्राज्य की देवीय श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति सार्थक है, लेकिन ये युवक शाह परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि उनका दत्तक पुत्र था और शाह परिवार के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा था, खासकर सामने वाली लड़की के साथ। चेहरे पर मुस्कान लिए सार्थक ने अपनी पीठ के पीछे से ढेर सारे चरम पत्र उतारे और उन्हें उस लड़की के सामने रख दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं आज फिर से बहुत सारे चित्र लाया हूं।
जब लड़की ने उन चरम पत्रों को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। अगले ही पल उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की और एक भयानक ज्वाला उन सभी चरम पत्रों को जलाने की कोशिश करने लगी। जब सार्थक ने देखा कि स्थिति और भी खराब हो रही है तो उसने धीरे से अपनी उंगली हवा में उठाई। एक पल में उसके सामने का आयाम विकृत होने लगा और चरम पत्रों की तरफ आ रही उग्र ज्वाला दो हिस्सों में बट गई, जिससे एक भी चरम पत्र को कोई नुकसान नहीं हुआ।
दी, मुझे ये काम ताऊ जी ने दिया है, क्या आप मुझे इसे पूरा नहीं करने देंगी?
सार्थक ने असहाय भाव से कहा। यह सुनकर वो लड़की बड़बड़ाई, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी आवाज में बोली,
तो फिर अपनी बकवास जारी रखो।
यह सुनकर सार्थक ने लापरवाही से एक चरम पत्र उठाया, फिर उसे धीरे से लड़की के सामने खोल दिया। चरम पत्र खुलने के बाद एक सुंदर व्यक्ति का चित्र दिखाई देने लगा। उस चित्र के बगल में कुछ कविताएं भी लिखी हुई थी।
इस तस्वीर में जो व्यक्ति है वो अमरावती का आतंक है, जो एक परम योद्धा है। यूं तो वो बहुत छोटा है, लेकिन वो पहले से ही अपने परिवार का मुखिया बन चुका है।
सार्थक एक मुस्कान के साथ बोला।
अगला,
लड़की भाव शून्य चेहरे के साथ बोली। सार्थक ने दूसरा चित्र निकालते हुए कहा,
अगला चित्र मायावी समुदाय के जीवन का है। वो 30 साल का है और मायावी समुदाय का एक अधिकारी है।
उस लड़की ने फिर से उदासीनता के साथ कहा,
अगला।
इसी के साथ सार्थक ने एक एक करके चरम पत्र के चित्र में मौजूद लोगों का परिचय करवाया। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा,
क्या आज आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो आपको पसंद हो?
लड़की एक क्षण चुप रही, फिर उसने उदासीन होकर उत्तर दिया,
नहीं।
वास्तव में यह बातचीत 1 महीने के अंदर 100 से अधिक बार दोहराई जा चुकी थी, वो भी दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। सार्थक को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा,
नहीं, फिर तो हमें कल तक इंतजार करना होगा।
पता नहीं फिर आपकी शादी कब होगी। ये सुनकर उस लड़की ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए डांटा,
बदमाश कहीं के, तुम कभी गंभीर नहीं होते।
जी हां, यह वही लड़की है जिसके पास शीर्ष प्रकृति शरीर है और इस लड़की का नाम है शिविका।
शाह परिवार इस समय वास्तव में चिंतित था। कालके की महत्वाकांक्षा ने पूरे मध्य क्षेत्र को घोर अराजकता में डाल दिया था और सभी समुदाय खतरे में थे। विदर्भ साम्राज्य की समृद्धि शाह परिवार से निकटता से जुड़ी हुई थी और अगर विदर्भ साम्राज्य पर कोई संकट आता है तो शाह परिवार को भी कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। अभी कालके के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम पैशाच संबंध सरणी था। इस सरणी को पूरा करने के लिए कालके ने कई दशकों तक इंतजार किया था, लेकिन अंत में श्यामली की मृत्यु के कारण उसके पास सरणी की स्थापना में देरी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन अब उसे शाह परिवार में एक लड़की का पता मिल चुका था जिसके पास शीर्ष प्रकृति शरीर था। ऐसे में भला शाह परिवार चिंतित क्यों नहीं होता? कुछ समय पहले उन्हें पता चला कि तामसिक समुदाय के जासूस अमरावती में घुस गए थे, जिसका मतलब था कि तामसिक समुदाय ने शिविका को निशाना बनाया था, जिससे पूरे अमरावती में दहशत फैल गई थी। वहीं उस कमरे में थोड़ी देर तक हंसी मजाक के बाद अचानक सार्थक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने गंभीरता से कहा,
आज गुरुदेव ने मुझसे कहा कि मैं आपको अब और मनमानी नहीं करने दे सकता।
सार्थक ने जिन गुरुदेव का उल्लेख किया था वो स्वाभाविक रूप से सम्राट समुद्रगुप्त थे। अगर सम्राट समुद्रगुप्त ना होते तो शिविका को इतनी मनमानी करने की अनुमति नहीं मिलती। भले ही सम्राट समुद्रगुप्त शिविका की रक्षा के लिए तत्पर हों, लेकिन विदर्भ साम्राज्य और अमरावती के लोगों के दिलों में बहुत सारी शिकायतें थी। इस समय निश्चित रूप से उन्हें पूरे मध्य क्षेत्र के भविष्य पर विचार करना था और इसके लिए वो लोग शाह परिवार की बेटी की बलि देने को भी तैयार थे। उन युवा प्रतिभाओं से शादी करने की बात तो दूर, भले ही उसे किसी सुअर या कुत्ते से शादी करनी पड़े फिर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी।
क्या नानाश्री ने भी ऐसा ही कहा था?
सार्थक की बातें सुनकर शिविका के चेहरे पर उदासी के भाव उभर आए। सार्थक शिविका से 1 साल छोटा था, लेकिन आखिरकार वो खुद सम्राट से प्रशिक्षण ले रहा था, इसलिए उसके विचार शिविका की तुलना में अधिक परिपक्व थे। इसलिए उसने शिविका को समझाते हुए कहा,
दी, गुरुदेव भी बहुत दबाव में है। ऐसी स्थिति में शायद कालके भी कोई कदम उठाने की योजना बना रहा होगा।
उसकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे विदर्भ साम्राज्य मध्य क्षेत्र की सबसे ताकतवर शक्ति है, वो भला पहले हम पर हमला क्यों करेगा?
शिविका ने नाखुश होकर सर झटका। यह सुनकर सार्थक ने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए कहा,
मध्य क्षेत्र में शीर्ष 3 ताकतें हैं, विदर्भ साम्राज्य, धनवंतरी व्यापार भवन और पवित्र आश्रम। अगर तामसिक समुदाय कोई कदम उठाना चाहता है तो वो निश्चित रूप से इन तीनों में से एक पर ही हमला करेगा। धनवंतरी व्यापार भवन के पास तो शक्तिशाली पूर्वज है, इसलिए विदिशा को इतनी आसानी से नहीं हरा जा सकता है। जहां तक पवित्र आश्रम की बात है तो उनके पास बेहद असामान्य समुदाय सुरक्षा सरणी है, इसलिए तामसिक समुदाय के लिए उन्हें हराना भी मुश्किल होगा। हालांकि विदर्भ साम्राज्य को मध्य क्षेत्र में सबसे मजबूत शक्ति कहा जाता है, लेकिन विदर्भ साम्राज्य पर हमला करना अपेक्षाकृत आसान है।
सार्थक का विश्लेषण वास्तव में बहुत उचित था। काल के अब भी धन्वंतरी व्यापार भवन की शक्ति से बहुत सावधान था, जबकि पवित्र आश्रम की समुदाय सुरक्षा सरणी से उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में विदर्भ साम्राज्य पर हमला करना सबसे सुरक्षित विकल्प था। इसके अलावा विदर्भ साम्राज्य की प्रतिष्ठा सबसे अलग थी, और अगर वो विदर्भ साम्राज्य को हरा देता है तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में स्वतंत्र योद्धा तामसिक समुदाय में शामिल हो जाएंगे। कुछ देर की खामोशी के बाद सार्थक ने फिर से गंभीरता के साथ कहा,
हो सकता है कि अगर काल के अमरावती पर हमला करता है तो आप सबसे बड़ा कारण ना हो, लेकिन आप उन कारणों में से एक जरूर होंगी। पर अगर आप किसी से शादी कर लेती हैं तो आप कालके को एक झटका जरूर दे देंगी। अगर इसके बाद भी तामसिक समुदाय हमला करता है तो कम से कम कोई आप पर जिम्मेदारी तो नहीं डालेगा।
हालांकि शिविका बहुत ही कोमल और शांत दिख रही थी, लेकिन जिद उसकी हड्डियों में विलीन हो चुकी थी। जब उसने सार्थक को गंभीरता से बात करते हुए सुना तो उसने अचानक कहा,
अगर लोग मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे तो क्या करूं? ज्यादा से ज्यादा मैं मर ही जाऊंगी बस।
सार्थक को भी पता था कि वो उससे इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, इसलिए उसने बस इतना कहा,
दी मुझे डर है कि आप चाहकर भी मर नहीं पाओगी।
इन शब्दों ने अचानक शिविका के शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया और उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। कालके एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर शिविका उसके हाथों में पड़ गई तो ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि उसके साथ क्या होगा। लेकिन शिविका की घबराहट सिर्फ एक पल के लिए ही रही, फिर उसकी जगह एक जिद ने ले ली और वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोली,
अगर ऐसा है तो मैं जहर तैयार कर लूंगी। अगर कालके ने हम पर हमला किया तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगी।
ये बात सुनकर सार्थक ने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर वो बाकी दोनों सेवकों के साथ उस कमरे से बाहर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह एक युवक हरे रंग के वस्त्र पहने हुए शाह परिवार के प्रवेश द्वार के सामने की चौक पर दिखाई दिया। दरअसल कल रात बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए नील ने रात में आराम किया। जब सुबह हुई तो वो अमरावती के आधे हिस्से में यात्रा करने के बाद आखिरकार शाह महल के पास पहुंच गया। जब वो शाह परिवार के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग पंक्ति में खड़े हैं। वो पंक्ति बहुत लंबी थी और उसमें 100 से ज्यादा लोग खड़े थे। वो लोग अच्छे और बुरे लोगों का मिश्रण थे। उनमें कुछ हट्टे कट्टे लोग, कुछ मुकुट पहने राजकुमार और कुछ नश्वर लोग भी थे जिनके पास कोई साधना नहीं थी, और कुछ पृथ्वी मंडल के योद्धा भी थे।
वाह, क्या नजारा है! क्या ये दूल्हे का चयन है?
उन लोगों को देखकर पंक्ति के बगल में खड़े नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
तो क्या होगा आगे? अब नील क्या कदम उठाएगा? कहीं उसे मजबूरी में राजकुमारी शिविका से शादी तो नहीं करनी पड़ेगी? क्या काल के पहले से ही चल चुका है अपनी चाल? और क्या वो कर लेगा शिविका को कैद?
जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा ओनली ऑन पॉकेट एफएम